SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
इस बुलेटिन में फेडरल बजट पेश करने से पहले सरकार ने लोगों के लिए जारी की चेतावनी. अगले हफ्ते पेट्रोल के दाम बढ़ने पर झटका हल्का करने का किया गया वादा और भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में 7 विकेट से ली जीत. आज के समाचार में फेडरल सरकार ने अगले महीने के फेडरल बजट पेश करने से पहले चेतावनी जारी की है. 2021-2022 वित्तीय वर्ष का अंतिम बजट परिणाम अगले सप्ताह जारी किया जाएगा और 25 अक्टूबर 2022 को देश का बजट पेश किया जाएगा. कहा जा रहा है कि ये अपेक्षा से लगभग $50 बिलियन बेहतर होगा, लेकिन कोषाध्यक्ष जिम चामस का कहना है कि ये अस्थायी कारकों से प्रेरित है. उन्होंने चेतावनी दी है कि लोगों को उनकी सरकार के पहले बजट से ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए. वित्त मंत्री केटी गैलगर का कहना है कि पिछली सरकार की सोच कम समय तक ही सीमित थी.
The approach we're taking on the budget is one of honesty. I think what we're seeing and what we're uncovering as we go through, you know, the budget process that we're currently undergoing is that the previous government did the bare minimum to skate through. It didn't accept that things like aged care, for example, you know, going across the forwards was going to cost a lot more. The provisions weren't made, and we've come in. And we're telling you that there are enormous pressures and the budget is in structural deficit.
उधर फेडरल विपक्ष 2021-2022 बजट की बेहतर स्थिति के लिए श्रेय का दावा कर रही है और विपक्षी ट्रेजरी के प्रवक्ता एंगस टेलर का कहना है कि मौजूदा सरकार पर इस रकम को लेकर भरोसा नहीं किया जा सकता है. उनका मानना है कि $50 बिलियन का मुनाफा तब पाया गया था जब उनका पक्ष सरकार में था. उनका दावा है कि लेबर पार्टी की सरकार सिर्फ इस पैसे को खर्च कर देगी.
He needs to be clear with the Australian people and say yes, he has inherited a very strong economy, a very strong budget, and his job now is to improve on that. The real pressure Australians are facing is at the grocery checkout, is on the cost of living side, and we do want to see a clear and comprehensive plan from Labor on that.
श्री टेलर का कहना है कि कोषाध्यक्ष जिम चामस को जीवन यापन के दबावों को दूर करने के लिए एक योजना बनाने की आवश्यकता है. उधर फेडरल कोषाध्यक्ष जिम चामस अगले सप्ताह पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के झटके को कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं. 28 सितंबर को सरकार की अस्थाई ईंधन उत्पाद शुल्क राहत यानी कि फ्यूल एक्साइज रिलीफ समाप्त होने पर कीमत बढ़ जाएगी. ये उपाय पिछली सरकार द्वारा मार्च में पेश किया गया था और वर्तमान सरकार ने इसे समाप्त करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई है. लेकिन डॉक्टर चामस का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन यानी कि ACCC ये सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी कि स्थिति से अनुचित मुनाफाखोरी ना हो. और उनका कहना है कि सरकार ने खुदरा विक्रेताओं को जागरूक किया है कि सिस्टम में 700 मिलियन लीटर ईंधन है जिसे उत्पाद राहत मूल्य पर खरीदा गया है, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं को तुरंत राहत समाप्त होने का पूरा भार नहीं उठाना पड़ेगा.
This is 700 million reasons why the price shouldn't shoot up by the full 23 cents on the night that the excise relief ends. And so the ACCC and the government expect that the price of petrol shouldn't shoot up at the bowser by the full 23 cents if the normal market pressures are in operation.
रिजर्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में फिर से ब्याज दरें बढ़ाने के अपने फैसले का बचाव किया है और कहा है कि दरों में बढ़ोतरी जारी रहेगी. अपनी सितंबर की बोर्ड बैठक के हाल ही में जारी किए गए मिनटों में केंद्रीय बैंक का कहना है कि आर्थिक चक्र पर मुद्रास्फीति को 2-3% के लक्ष्य स्तर पर वापस लाने और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए 50 आधार अंक की वृद्धि आवश्यक थी। इसमें कहा गया कि 25 अंकों के बजाय 50 अंकों की वृद्धि उचित है क्योंकि ब्याज दरें अभी भी अपेक्षाकृत कम हैं। ये मुद्रास्फीति से निपटने के लिए दरों में और वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उनका कहना है कि मुद्रास्फीति किस रास्ते पर जाएगी ये अभी अनिश्चित है। उनका ये भी कहना है कि उन्हें अपने ब्याज दर निर्णयों के साथ रोजगार और आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना होगा। 2022 की संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में शुरू हो गई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और जीवन यापन की बढ़ती लागत ऐसे विषयों पर चर्चा शामिल है। ये ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में कई देश असमानता, बढ़ते जलवायु संकट, कई अकालों के खतरों और बढ़ती गलत सूचनाओं का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटरेश ने 2015 में संगठन द्वारा सीमांकित स्थायी विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने और उन्हें पूरा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए असेंबली की शुरुआत की। उनका कहना है कि इन मुद्दों को अगली पीढ़ी के लिए निपटने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है।
Each peril is pushing the sustainable development goals further out of reach. And in the face of such perils, it is tempting to put our long-term development priorities to one side, to leave them for a sunny day. But development cannot wait. The education of our children cannot wait. Dignified jobs cannot wait. Full equality for women and girls cannot wait. Comprehensive health care, meaningful climate action, biodiversity protection, these cannot be left for tomorrow.
एक नए पोल से पता चलता है कि सर्वेक्षण में शामिल आधे से भी कम लोग ऑस्ट्रेलिया को गणतंत्र बनाने के पक्ष में हैं। एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थिति के रूप में ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान स्थिति महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी ऑस्ट्रेलिया लौट रहे हैं। महारानी की मृत्यु के बाद से ऑस्ट्रेलियाई लोग उनके सम्मान में गणराज्य के बारे में बात करने से हिचक रहे हैं। क्वीन एलिजाबेथ के सम्मान में गुरुवार सितंबर 22 को एक राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलिडे की घोषणा हुई है। उस दिन कैनबरा में फेडरल संसद भवन में उनके लिए एक राष्ट्रीय स्मारक सेवा आयोजित होगी, जिसमें फेडरल, राज्य और क्षेत्रीय नेताओं के साथ साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होंगे। उधर मेलबर्न के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल के डिब्बे से भरी ट्रॉली को लेकर अजीब हरकत करने के बाद एक व्यक्ति पुलिस गार्ड के अधीन अस्पताल में है। घटना की वजह से इलाके के एक हिस्से को लॉकडाउन में डाल दिया गया था और सुबह के व्यस्त समय में विलियम और बर्क स्ट्रीट के कोने पर एक इमारत में लगभग 45 मिनट तक पुलिस द्वारा बातचीत के बाद 52 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। एक चश्मदीद गवाह का कहना है कि उस आदमी ने जमीन पर मौजूदा टाइलें तोड़ दी और ये दावा किया कि उसके पास एस्बेस्टोस है, लेकिन विक्टोरिया पुलिस के कार्यवाहिक वरिष्ठ सार्जेंट बॉनी हेजलवर्ड का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
He did have a cylinder, however, that wasn't hazardous substance either. After being, assessed by Fire Victoria, no hazardous substances on him.
पुलिस का कहना है कि ये इस किस्म की इकलौती घटना थी जो पूर्व नियोजित नहीं थी। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 67 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 53.50 रुपये हो गई है। खेल समाचार में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 227 का स्कोर बनाया, लेकिन जवाब में भारत ने 44.2 ओवर्स में तीन विकेट गंवाकर 232 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 74 रनों की पारी खेली। AFL के मुख्य कार्यकारी गिलन मैक्लॉकलन ने बताया कि कई राज्य अगले साल खेलों के पूरे दौर की मेजबानी करने के लिए स्पर्धा कर रहे हैं। AFL इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या वह नेशनल रग्बी लीग के मैजिक राउंड कॉन्सेप्ट को अपनाएगा, जहां हर साल एक राउंड में सभी गेम एक शहर में खेले जाते हैं। यदि ये प्रस्ताव अपनाया जाता है तो अप्रैल में इसे आयोजित किया जाएगा और AFL नियमित सीजन को एक सप्ताह से बढ़ा दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक टीम अपने मौजूदा कोटा के साथ 11 घरेलू खेलों और 11 बाहरी खेलों में भाग लेगी, जिसमें मैजिक राउंड गेम भी जोड़ा जाएगा। इस अतिरिक्त नियमित सीजन राउंड के कारण आधिकारिक प्री सीजन मैचों को रद्द कर दिया जाएगा। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल बारिश की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 20 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में भी हल्की बरसात के आसार और वहां का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहेगा और अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक जाएगा। मेलबर्न में भी एक या दो बौछार की संभावना, यहां का न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम 20 डिग्री तक रहेगा। कैनबरा में बरसात का मौसम रहेगा, वहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। सिडनी में बारिश के आसार रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम 22 डिग्री तक जाएगा। ब्रिस्बेन में भी बारिश वाला मौसम रहेगा और वहां का न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम 25 डिग्री तक रहेगा। डार्विन में आंशिक रूप में बादल छाए रहेंगे, वहां का न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जाएगा। उधर भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बादल गरजने के साथ छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है, वहां का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 31 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.